अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 18 है। नॉवल डॉक्टर दुआगु, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट 18। इमरान को देखकर प्रोफेसर तारिक के गुस्से में इजाफा हो गया। चीख कर बोला, ये क्या बेहूदगी है, इसका मकसद? जवाब इमरान ने हाथ से दिया, घूसा बाएं जबड़े पर पड़ा था। तारीख कुर्सी से फर्श पर उलट गया, फिर इसी अंदाज में दोबारा उठा था जैसे इमरान का गला ही घोट देगा। ब्लैक जीरो दरमियान में आ गया, शायद उसने यही सोचा होगा कि इमरान बायां बाजू जख्मी है। प्रोफेसर तारीख उसी पर झपट पड़ा लेकिन मुंह की खाई। ब्लैक जीरो जो इसके लिए पहले से तैयार था उसे फर्श पर गिरा कर चढ़ बैठा और दो तीन मुक्के गुद्दी पर जमाए। तारिक बेबसी से चीखा, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? छोड़ो, इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा। ब्लैक जीरो उसे छोड़कर हट गया और इमरान उसे गिरेबान से पकड़कर उठाता हुआ बोला, तुम्हें किसने मशवरा दिया था कि समिया को अपनी ही मसले में ब्लैकमेल करो? ओ, तारिक फोन भेज कर रह गया, फिर झुक कर खून थूकने लगा। इसका निचला होंठ फट गया था। बताना पड़ेगा, इमरान सांप की तरह फमकारा, वरना इतना मारूंगा कि मर जाओगे और यहीं कहीं कंपाउंड में दफन करा दूंगा। तब तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो मुंह पर हाथ रखकर खौफजदा अंदाज में बोला। बताओ, इमरान फिर झपटा। ठहरो, इसने इसे रोकने के लिए दोनों हाथ आगे फैला दिए। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकूंगा, मैंने इसे ब्लैकमेल किया था। किसके इशारे पर? मैं नहीं जानता, वो सिस्की लेकर बोला। मुझे डॉक से एक तस्वीर मिली थी जो हम ही दोनों की थी। काबिले एतराज हालत में तस्वीर भेजने वाले ने लिखा था कि अगर ये तस्वीर खान बहादुर के हाथ तक जाए तो वो तुम्हें कत्ल करा देगा। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को भेज दी जाए तो तुम्हें मुलाजमत से हाथ धोने पड़ेंगे, लिहाजा अकलमंदी यही होगी कि जो कुछ कहा जाए करो। और फिर उसने लिखा था कि मैं खुद इसे ब्लैकमेल ही करूं। मजबूरन करना पड़ा, यकीन करो। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, खुद मौजूद है इसका है लेकिन बेकार, क्योंकि अंग्रेजी में टाइप किया गया है, नीचे किसी के दस्तखत भी नहीं है। फिर भी तुमने उन्हें महफूज कर रखा है या नहीं? नहीं, हमेशा तल्फ कर देता हूँ, क्योंकि अब हिसाब एहसास हुआ है कि मैं किसी गैर मुल्की एजेंट के फंदे में पड़ गया हूँ, इसलिए कोई ऐसी चीज बतौर सबूत अपने पास नहीं रख सकता जो मेरी गर्दन फंसाने का बायस बने। ये तुम किस बिना पर कह रहे हो कि वो कोई गैर मुल्की एजेंट है? पिछले दिनों इसने खास मसले पर मुझे तलबा में बेचैनी फैलाए पर मजबूर किया था। ओ, इमरान किसी सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद इसने ब्लैक जीरो से कहा, इसे ले जाओ, दूसरे को लाओ। आप कौन हैं? तारिक ने भराई हुई आवाज में पूछा, लेकिन इमरान ने जवाब देने के बजाय हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। ब्लैक जीरो इसे कमरे से बाहर धकेल ले गया। कुछ देर बाद वो डॉक्टर को लाया जो बिल्कुल किसी ऐसे उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर पलके झपका रहा था जैसे रोशनी पर पकड़ा लाया हो। तुम पागल हो, खतरनाक किस्म के पागल, वो इमरान की तरफ उंगली उठाकर बोला। इस तरह इलाज हरगिज नहीं हो सकेगा, अपने वालदैन को भेजो मेरे पास। जरूर भेजूंगा, इमरान सर हिलाकर बोला। सिर्फ 30 रुपये में मुझे यहाँ घसीट लाए, घर पर जाने की 50 रुपये फीस होती है। कल बकिया 20 सिक्योरिटी को दे देना। बहुत अच्छा, इमरान ने सादक मंदाना अंदाज में कहा। और ब्लैक जीरो ने बोला, डॉक्टर साहब के लिए चाय लाओ। नहीं, मैं चाय नहीं पीता, डॉक्टर भटनागर ने हाथ हिलाकर कहा। मुझे जल्द चलना चाहिए, कई मरीज मुंतजर होंगे। जी बहलाने के लिए 2-4 चुगदारी किस्म के बिल्ले भी लेते जाना। क्या मतलब? डॉक्टर भटनागर चौंक कर इसे घूमने लगा। कुछ दिन पहले कोई औरत हमें चंद बिल्ले दे गई थी। यार, तुम बिल्कुल पागल मालूम होते हो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मुझे जाने दो, बैठ जाओ। इमरान कुर्सी की तरफ इशारा करके घुराया, नहीं बैठूंगा। हाँ, क्या समझाया तुमने? इमरान ने इसका छाना दबोच कर जबरदस्ती बिठा दिया और बोला, तुमने इस आदमी को देखा ही होगा जिसे अभी इसके कमरे में ले जाया गया है। उसके होंठ फट गए थे, खून बह रहा था। तुम डेढ़ बसली के आदमी हो, इसलिए मोहताज रहना चाहता हूँ। क्या मतलब? यानी के बिल्लों पर तुमने क्या अमल किया था? डॉक्टर भटनागर कुछ ना बोला, खामोशी से इमरान को घूरता रहा। अलबत्ता इसका सीना धुकनी की तरह फूलने और पिचकने लगा था। थोड़ी देर तक खामोशी रही और इमरान छत का जायजा लेता रहा। फिर ब्लैक जीरो से बोला, इसे छत से उल्टा लटका दो, मारपीट में अपना ही खसारा है। अगर मर गया तो खामोखा इसकी आरती भी फूकना पड़ेगी। कि क्या कर रहे हो तुम लोग? जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वैसे अगर तुम सच सच बता दो तो मारपीट से बच जाओगे। क्या बताऊं? तुमने इन बिल्लों का क्या किया था जो तुम्हें इस औरत से मिले थे? मैंने इन्हें एक दूसरे आदमी के हवाले कर दिया था। यूं ही इमरान इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, नहीं, मैंने उनके नाखूनों को जहरीला बनाया था और इन्हें ऐसे इंजेक्शन दिए थे जो उनमें जिनसी तहरीक पैदा कर सके। जहर की नौीयत क्या थी? क्या वो जानलेवा साबित हो सकता था? सिर्फ एक बिल्ले के नाखून मालिक किस्म के जहर में डूबो हुए गए थे और बकिया पर ऐसे जहर का पेंट था जो गहरी बेहोशी तारी करता है और होश आने पर ऐसी नकाहत महसूस होती है जैसे बरसों से बीमार रहा हो। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम हो सका कि उन बिल्लों ने शहर में कैसी उधम मचाई थी? मैंने इस सिलसिले में कुछ भी नहीं सुना था। खैर, और क्या काम दिया जाता है तुमसे? मेरा ख्याल है कि तुम जहरों के भी माहिर हो। ये दुरुस्त है, जहर मेरा मखसूस मौजू रहे हैं, सुइयों को भी जहर आलूद कर सकते हो। हाँ, मैंने कुछ सुइयां जहर आलूद की थी, मौलिक थे, इमरान ने पूछा। कुछ मौलिक थे और कुछ बेहोशी करने वाले थे। वो किसके लिए थी? काश मैं इसे जानता होता, डॉक्टर भराई आवाज में बोला। क्यों? इमरान ने आंखें निकाल कर कहा, अब झूठ बोलोगे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। डॉक्टर का लहजा नाखुशगवार था। यह हकीकत है कि मैं इसे नहीं जानता, काश मैं जानता होता, काश मैं। लेकिन तुम इसके लिए ऐसे काम क्यों अंजाम दे रहे हो? सूरत से तुम बहुत शरीफ आदमी मालूम होते हो। वो कोई ब्लैकमेलर है? मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पहले यह खत के जरिए मुझे मेरी बात कमजोरियों से आगाह किया गया था, इसके बाद से बदरिया फोन ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और किस किस्म के काम लिए जाते रहे हैं तुमसे? बस अभी तक मुख्तलिफ किस्म की जहरालू चीज़ें तैयार कराई गई हैं, लेकिन मैं इनके मकसद या इस्तेमाल से नावाकिफ हूँ। शुक्रिया डॉक्टर, तुम्हें चंद दिन मेरा मेहमान रहना पड़ेगा। क्यों, ये नामुमकिन है? तुम समझते नहीं, वो ब्लैकमेलर या गैर मुल्की एजेंट है और किसी मुल्क के लिए जासूसी कर रहा है। ओ, डॉक्टर हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। तुम अच्छे आदमी मालूम होते हो, इसलिए तुम्हें आराम से रखा जाएगा। अगर तुम्हें छोड़ दिया गया तो इसे गिरफ्तार करने में दुश्वारी होगी। अगर ये बात है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। क्या तुम महकमा सराग रखने से ताल्लुक रखते हो? हाँ, यही समझ दो। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मेरे उन जुराइम की पर्दापोशी हो सके जिनके सिलसिले में ब्लैकमेल होता रहा हूँ? वैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं स्ट्रिंग का मुजरिम नहीं हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें अदालत में नहीं पेश होना पड़ेगा। शुक्रिया, इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा। कमरा नंबर 11 में डॉक्टर के सोने का इंतजाम कर दो, और इन्होंने अभी रात का खाना भी ना खाया होगा, फिर दूसरे को भी लाओ। ब्लैक जीरो डॉक्टर को ले गया और फिर थोड़ी देर बाद रोबन मुखर्जी के साथ वापस आया, जो बहुत ज़्यादा बुरा फरोख नजर आ रहा था। ये क्या बेवकूफी है, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम किसी गैर मुल्की एजेंट के मुताबिक पूछताछ कर रहे हो, इसने चीख कर कहा। यह गलत नहीं है, इमरान ने आहिस्ता से जवाब दिया, लेकिन मुझे क्यों इस तरह पकड़ा गया है? इसलिए कि तुम भी उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बता सकोगे। जबरदस्ती? हाँ, खुशी से नहीं बताओगे तो जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। मैं किसी गैर मुल्की एजेंट के मुताबिक नहीं जानता। फिर तुम राजन के नाम पर चुपचाप क्यों चले आए? मैं किसी राजन को नहीं जानता। तुमने कहा था कि मेरे बच्चे का हाथ टूट गया है। इमरान ने कुछ कहने के बजाय उल्टा हाथ इसके मुंह पर रसीद कर दिया और वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से जा टकराया। दूसरी तरफ ब्लैक जीरो उसके जवाबी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन खिलाफे तवक्का वो दीवार से टिका हुआ हाँकता ही रह गया। मजबूत हाथ पैर का आदी था, इसलिए यही सोचा जा सकता था कि थप्पड़ खाने के बाद वो इमरान से लिपट पड़ेगा। बताओ तुम किसके लिए काम कर रहे हो, इमरान बुलाया। मैं नहीं समझ सकती, शट अप, दूसरे आदमी की हालत देख चुके हो। मैं बड़ी बेदर्दी से मारता हूँ, ये सोचे बगैर कि पिटने वाला जिंदा रहेगा या मर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, तुमने अपनी फिल्म की कैशियर राजन चौधरी को क्यों ब्लैकमेल किया था? ये बकवास है, मैंने तो एक मुसीबत से उसे निजात दिलाई थी। अगर तुम उस राजन की बात कर रहे हो, 50,000 का गबन, इमरान इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। हाँ, लेकिन वो शॉर्टेज तुम्हारी रियाज का एक शोबदा थी। ये गलत है, बिल्कुल दुरुस्त है। क्या तुम राजन के बयान को झुठला सकोगे? कोई भी किसी के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर सकता है, लेकिन ये इल्ज़ाम तराशी नहीं है। तुमने जिस धरे पर उसे लगाया था, आज भी इसी से लगा होगा। मैं नहीं जानता कि तुम किस धरे का जिक्र कर रहे हो। ये यूं नहीं उगलेगा, इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा। आग में लोहे की सलाख तपाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, रोबन मुखर्जी चीखा। मुझे कौन रोकेगा? तुम जो कुछ भी कर रहे हो खिलाफे कानून है। तुम्हें हमारे कवानीन से क्या सरोकार, जबकि मुल्क की गद्दारी कर रहे हो। ये झूठ है, इसे साबित नहीं किया जा सकता। साबित करने की ज़रूरत ही क्या है, इतना ही काफ़ी है कि मैं तुम्हें गद्दार और बाज़ गैर मुल्की एजेंटों का परवास समझता हूँ। रोबन मुखर्जी कुछ ना बोला। इमरान उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। दफ्तर इसने ब्लैक जीरो से कहा, तुम अभी गए नहीं, मैंने तुमसे लोहे की सलाख तपाने को कहा था। ब्लैक जीरो जाने लगा और रोबन मुखर्जी हाथ उठाकर बोला, ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो? तुम कौन हो, क्या चाहते हो? क्या अब भी ये बताने की ज़रूरत रहती है कि हम कौन हैं? इमरान ने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम किस के लिए काम कर रहे हो? तुम राजन से सब कुछ मालूम कर चुके हो, फिर अब मैं और क्या बताऊं? वो किसी नामालूम आदमी के लिए काम कर रहा है। अगर मैं भी यही कहूं तो तुम यकीन कर लोगे, इसने पूछा। अगर तुम इसके लिए कोई माकूल जवाब पेश कर सके। मैं भी नहीं जानता कि किसके लिए काम कर रहे हो, मुझे भी ब्लैकमेल किया गया था, लेकिन तुमने राजन को स्मगलिंग करने वाली किसी पार्टी की कहानी सुनाई थी। मुझसे यही कहा गया था, इमरान किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर इमरान ने पूछा, तुम्हारे जिम्मे क्या काम है? इनके बताए हुए लोगों को ब्लैकमेल करके उनके सपोर्ट कर देना। सपोर्ट कर देने से क्या मुराद है? फिर वो बड़ा रात या मेरे ही तौसत से इनसे काम लेना लगते हैं। कितने आदमियों को तुमने इस तरह बेरा किया है? मुझे इनकी पूरी लिस्ट में पता चाहिए। मुखर्जी ने ऐसे आदमियों के नाम और पते नोट कराए। इमरान ने फिर इससे कुछ नहीं पूछा। ब्लैक जीरो मुखर्जी को फिर साउंड प्रूफ कमरे में छोड़ आया। इस बार मुखर्जी बिल्कुल खामोश था। ना तो इसने रिहाई के बारे में कुछ कहा और ना गुस्से ही का मुजाहरा किया। फिर ब्लैक जीरो और इमरान लाइब्रेरी में आ बैठे। मैं नहीं समझ सकता कि आप क्या कर रहे हैं, ब्लैक जीरो आहिस्ता से बोला और इमरान चौंककर से घूरने लगा। डोरंग वगैरह आपके सामने हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। सबूत बहन पहुंचाए बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर इनके खिलाफ हम क्या कर सकेंगे सिवाय इसके कि हमारी हुकूमत इन्हें नापसंदीदा अफराद करार देकर इनकी हुकूमत से इस्तदा करे कि इन्हें वापस बुलवा ले। फिर आप क्या करेंगे? सुनो डोरंग, गैस के सिफारत खाने वाले बराह रास्त यहाँ के लोगों को काम पर नहीं लगा सकते। इसके लिए इनका कोई तनख्वाहदार मकामी आदमी यकीनी तौर पर होगा। असल चीज़ इस पर हाथ डालना है और मैं इसी की फिक्र में हूँ। इसके हाथ आते ही ग्रोह टूट जाएगा। ब्लैक जीरो कुछ सोचता हुआ बोला, अब आखिरी कार्ड है हाथ में, ये अगर नाकाम रहा तो। इमरान जुमला मुकम्मल किए बगैर कुछ सोच में गुम हो गया। फिर यकदम चौंक कर बोला, ओ मेरी अकल कहाँ गई, ओ ओ। वो मुस्तरबाना अंदाज में खड़ा हो गया। क्या बात है, ब्लैक जीरो ने पूछा। सनिया जी अस्पताल में ही में है, इन तीनों के गायब हो जाने के बाद वो लोग यकीनी तौर पर सोचेंगे कि सनिया। ओ ठहरो, मुझे सोचने दो। थोड़ी देर तक वो टहलता रहा, फिर ब्लैक जीरो से बोला, सनिया को 2-3 दिन तक अस्पताल ही में रहना चाहिए, इसी दौरान में इन्हें इन तीनों की गुमशुदगी का इल्म हो जाएगा। फिर वो सोचने पर मजबूर होंगे कि यकीनी तौर पर राजन और सनिया दोनों ही इनसे टूट चुके हैं। ना सिर्फ टूट चुके हैं बल्कि जिन लोगों को जानते थे उनकी निशानदेही भी कर चुके हैं। लिहाजा वो राजन और सनिया को निकाल ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि इनसे इसके बारे में पूछताछ कर सकें। अब तुम ये करो कि इन आदमियों को भी यहीं घेर लाने की कोशिश करो जिनके नाम और पते रोगन मुखर्जी ने लिखवाए हैं। वो फिर खामोश होकर कुछ सोचने लगे और देखो अपने सारे आदमियों को सनिया और राजन की निगरानी पर मामूर कर दो। हर पार्टी के पास एक रेडियो कार जरूर होनी चाहिए ताकि वह हेडक्वार्टर को ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रख सके। पैगाम हमारी मखसूस कोडवर्ड्स में होने चाहिए। ब्लैक जीरो इसी वक्त इस मुहिम पर रवाना हो गया। इमरान ऑपरेशन रूम में आया और फ़ोन पर डॉक्टर दुआगो के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से जवाब मिलने में कुछ देर लगी। कॉल इसकी नई सेक्रेटरी ने रिसीव करके उसे होल्ड ऑन करने को कहा था। हेलो, दूसरी तरफ से थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, कौन साहब हैं? इमरान। ओ तुम कहाँ हो लड़के, मैं आज तुम्हारे घर गया था, मालूम हुआ कि तुम रास्ते गायब हो, कहाँ से बोल रहे हो? ये नहीं बता सकता। फिर क्यों रिंग किया है? कोई और धमकी मिली इस आदमी की तरफ से? अभी तो नहीं, मेरा ख्याल है कि आप इसकी पेशकश कबूल कर लें। क्या कह रहे हो लड़के? मसला मैं ये नहीं कहता कि आप सचमुच ज़मीरी फरोशी पर आमादा हो जाएं। फिर क्या कहना चाहते हो? यही कि आप इससे वादा कर लें, फिर मैं देख लूँगा। देखो कहीं मैं सचमुच किसी मुसीबत में ना फंस जाऊँ। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर, तुम्हारी ज़िम्मेदारी, तुम्हारी कोई सरकारी हैसियत तो है नहीं। नहीं भाई, मुझे इस पर मजबूर ना करो। अच्छी बात है अगर इसने सचमुच आपको ख़त्म कर दिया तो। नमूना तो आप देख चुके हैं, खौमा खा मुझे खौफजदा ना करो। सचमुच इसकी आवाज़ खौफ से कांप रही थी। बस जो कुछ कह रहा हूँ वही कीजिए और मुझे मुतला कर दीजिए। किस नंबर पर? ये मसला दुश्वार है, खैर मैं कल आपको नंबर से मुतला भी कर दूँगा। इमरान ने रिसीवर क्रीडर पर रखकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। दूसरे दिन दोपहर तक उनो आदमी भी वहाँ आ फंसे। इन्होंने तस्दीक कर दी कि रोगन मुखर्जी ही ने इन्हें इस जंजाल में फंसाया था, लेकिन वो भी इससे ज़्यादा ना बता सका। असल आदमी अभी परवासाज ही में था। शाम होते होते ब्लैक जीरो ने इमरान को एक बुरी खबर सुनाई। राजन गायब हो गया। उसने कहा, क्यों? इमरान ने आंखें निकाली। कौन कर रहा था उसकी निगरानी? चौहान और तनवीर। कैसे गायब हो गया? इन्हें यकीन था कि वो झोपड़ी में ही मौजूद है। वो दूर रहकर निगरानी कर रहे थे, लेकिन झोपड़ी दो तरफ से झाड़ियों में घिरी हुई है। इन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। शाम को जब चौहान रफा दफ हाजत के बहाने इधर गया, तो झोपड़ी की दीवार टूटी नजर आई। राजन का कहीं पता नहीं था। ये तनवीर बेहद तकलीफदा होता जा रहा है, इमरान गुर्राया। दूसरों की अकलें भी खप्त हो जाती हैं इसके साथ रहकर, ब्लैक जीरो बड़बड़ाया। देखो, अगर समय भी हाथ से गई तो हम फिर अंधेरे में हाथ फेर मारते रह जाएंगे। मैं खुद जा रहा हूँ, इसे देखूंगा, ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है, तनवीर को यहाँ भेज दो। ब्लैक जीरो चला गया और कुछ देर बाद चौहान और तनवीर वहां पहुंच गए। इमरान ने चौहान से पूछा कि राजन किस तरह गायब हो गया था। मैंने तनवीर से कहा था कि झाड़ियों की तरफ भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसने मजाक उड़ाया था मेरा। कहने लगा, यार तुम लोग तो ऐसी बातें सोचने लगते हो जो दूसरों के ख्वाब ख्याल में भी ना हो। आखिर वही हुआ। वो लोग झाड़ियों की तरफ का हिस्सा तोड़कर उसे निकाल ले गए। अंदर यकीनी तौर पर जद्दोजहद हुई थी, क्योंकि स्टूल उल्टे पड़े थे और शेल्फ भी उल्टे हो गए थे, कई बर्तन टूट गए थे। इमरान खामोश रहा। मसलन तनवीर से कुछ नहीं कहा। इसके बाद चौहान को भी दूसरों की मदद के लिए वापस भेज दिया गया। रात को फिर इसने डॉक्टर दुआगु से फ़ोन पर रابطہ कायम किया, लेकिन दुआगु ने बताया कि अभी तक इस नामालूम आदमी की तरफ से कोई नई धमकी नहीं मिली। इस बार फिर इसने इमरान से फ़ोन पर नंबर मालूम करना चाहा, लेकिन इमरान दानिश मंजिल के नंबर तो किसी सूरत से दे ही नहीं सकता था। हालांकि यहाँ के नंबर भी टेलीफोन डायरेक्टरी में दर्ज नहीं थे, फिर भी मुहतात तो रहना ही था। इसने दुआगु से कहा कि वो खुद ही फ़ोन पर इससे रابطہ कायम करके मालूमात हासिल करता रहेगा। वैसे से डॉक्टर दुआगु से बेहद खौफजदा मालूम हुआ था। इमरान बार बार ऑपरेशन रूम में जाकर समिया की निगरानी करने वालों के पैगाम सुनता था। अभी तक कोई नई बात जरूर पजीर नहीं हुई थी। वैसे अभी से अपनी स्कीम बार आवर होने में शुबा ही था। राजन के अगवा ने केबिल बिगाड़ दिया था। काश इसके आदमी बर वक्त आगा हो गए होते और इन्होंने अगवा कुन गान का ताकुब किया होता। गालिबन इन्हें हिल्म हो गया था कि राजन की निगरानी की जा रही है, तभी तो इन्होंने अगवा के लिए झोपड़ी का अगली हिस्सा मुंतखब किया था, जिसे झाड़ियाँ घेरे हुए थे। इमरान सोच रहा था कि अगर वो राजन की जबानी खुलवाने में कामयाब हो गए होंगे तो शायद ही समिया की तरफ रुख करें। फिर सोचता, राजन इसकी शख्सियत से वाकिफ नहीं था, इसलिए यह भी मुमकिन था कि इसकी शख्सियत मालूम करने के लिए वो समिया की तरफ मुतवज्जा ही हो जाए। उनके जाने से शायद समिया उसकी शख्सियत पर रोशनी डाल ही सकती। बहरहाल उसे यकीन नहीं था कि वो समिया के सहारे किस कदर आगे भी बढ़ सकेगा। तकरीबन 9 बजे सब ट्रांसमीटर पर पैगाम वसूल होना शुरू हो गए। पैगाम को डॉट्स में थे, जिनके मुताबिक समी अस्पताल से बाहर आकर सियारंग की एक छोटी सी कार में बैठ गई। कार खाली थी, जिसे वो खुद ही ड्राइव करती हुई कंपाउंड से निकलकर सड़क पर लाई थी, और अब रेडियो कार से पैगाम मौसूल हो रहे थे। समी की कार वीराने की तरफ जा रही थी। वो तन्हा है, खुद ही कार ड्राइव कर रही है। हमारे पीछे कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। इसकी कार किधर जा रही है? इमरान ने पूछा। सिविल अस्पताल से सिंध का तायुन करो, अकबर रोड पर शुमाल की जानिब, जवाब मिला। ठीक है, ताकुब जारी रखो, लेकिन इस अंदाज में कि इससे ताकुब का शुबा ना हो सके। फिर सन्नाटा छा गया, सिर्फ कार के इंजन की आवाज़ सुनाई देती रही। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, वो कस्टम पोस्ट के सामने वाले कच्चे रास्ते पर बाएं जाने मुड़ रही है। अपनी गाड़ी की हेडलाइट बुझाकर ताकुब जारी रखो, इमरान ने कहा। इसके बाद फिर कार के इंजन की आवाज़ सुनाई देती रही। तकरीबन 5 या 6 मिनट बाद आवाज़ आई। इस रास्ते के सिरे पर एक इमारत वाकिया है, वो इसमें दाखिल हुई है। कार बाहर ही खड़ी है, हमने अपनी गाड़ी करीबी झाड़ियों में छुपा दी है और इमारत की निगरानी कर रहे हैं। इमारत के चारों तरफ फैल जाओ, एक आदमी ट्रांसमीटर पर है, इमरान ने कहा। अब ट्रांसमीटर पर कार के इंजन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। क्यों, क्या रहा, इमरान ने थोड़ी देर बाद पूछा। मैं सफदर रेडियो पर हूँ, चौहान, खावर और नैमानी इमारत की निगरानी कर रहे हैं। ओ, किसी गाड़ी के हेड लैंप दिखाई दे रहे हैं, वो उधर ही आ रही है, मोहतात रहो, इमरान ने कहा। कुछ देर तक सकूत रहा और फिर सफदर की आवाज़ सुनाई दी। एक बड़ी सी वैन है, कई आदमी उतरे हैं, वो इमारत की तरफ जा रहे हैं, होशियार रहो, इमरान मुस्तरबाना अंदाज में बोला। मैं भी आ रहा हूँ, इमरान ने सफेद ट्रांसमीटर संभाला। फिलहाल यहाँ दानिश मंजिल में कोई रेडियो मौजूद नहीं थी। गैराज से जीप निकाली और कंपाउंड में पहुंचकर अगले नशिस्त उठाई, जिसके नीचे एक टॉमी गन रखी थी और वाफी मकदार में कारतूस भी थे। इसने टॉमी गन को चेक किया और फिर इसी तरह सेट के नीचे रखकर इंजन स्टार्ट किया, ट्रांसमीटर का स्विच ऑन कर दिया। मंजिल मकसूद का नक्शा जहन में महफूज था। जीप पराठे भरती हुई कंपाउंड से सड़क पर निकल आई। ट्रांसमीटर डैशबोर्ड के खाने में रख दिया था, जो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा था। हेलो हेलो, इसने कहा। सफदर, मैं सफदर बोल रहा हूँ, कोडवर्ड में जवाब मिला। क्या पोजीशन है? दोनों गाड़ियाँ बाहर मौजूद हैं, कोई अभी तक बाहर नहीं निकला। हमारे आदमियों से भी कोई ख़ास इतला नहीं मिली। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, शारा नंबर 5 पर, आवाज़ की सिम चले आना। बहुत बेहतर, जीप फराटे भरती रही। कस्टम पोस्ट के करीब पहुँच कर वो बताए हुए रास्ते पर मुड़ गया। हेलो हेलो, इसने फिर सफदर को मुखातिब किया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कस्टम पोस्ट से अंदाज़ा फासला होगा, 3 या 3.5 मील आवाज़ आई। आप कहाँ हैं? कच्चे रास्ते पर मुड़ चुका हूँ, अब यहाँ बाहर खिड़कियों में रोशनी नज़र आ रही है, होशियार रहो। इसने अंदाजे से एक जगह जीप रोक दी और इसे बाएं जाने वाले ढलान में उतारता चला गया। नीचे बाहर झाड़ियाँ भी थीं। इसने सना जीप झाड़ियों की ओर में खड़ी की कि ऊपर वाले कच्चे रास्ते से आसानी नज़र ना आ सके। फिर इसने सेट के नीचे से टॉमी नामी गन निकाली, मैगजीन की पट्टियाँ निकाली और पैदल ही मगरिब की तरफ चल पड़ा। रफ्तार खासी तेज थी, इमारत तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इसने एक जगह रुककर कुत्तों की तरह रोना शुरू किया और फिर भौंकने भी लगा। एक साया तेजी से इसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। गालिबन यही वही इशारा था जिसके मुताबिक इसने ट्रांसमीटर पर सफदर को बताया था। आने वाला भी सफदर ही निकला। खावर ने अंदर जाने के लिए रास्ता भी तलाश कर लिया है, इसने इमरान से कहा। अच्छी खबर है, इमरान बोला, वैसे कोई बाहर तो नहीं आया? नहीं, सफदर ने जवाब दिया। इमारत के करीब पहुँच कर वो ज़मीन पर लेट गया और सीने के बल खिसक खिसक कर आगे बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरह सफदर इसे इमारत की पुछ पर ले आया। यहाँ चौहान, खावर और नैमानी मौजूद थे। तीन आदमियों को अंदर पहुँचने की कोशिश करना चाहिए, इमरान ने कहा। दो बाहर ठहरे, एक इमारत की पुछ पर रहे और एक सामने। हाँ, इन दोनों अतराज के अलावा और किसी तरफ तो निकासी के रास्ते नहीं। नहीं, खावर ने जवाब दिया, मैं अच्छी तरह जायज़ा ले चुका हूँ। चलो वो रास्ता दिखाओ, इमरान ने खावर से कहा और दूसरों से बोला, चौहान और नैमानी बाहर ठहरे। वो आगे बढ़े। ये छोटा सा दरवाज़ा था जो बाहर से मुगजल था। सब्दर ने जेब से चाकू निकाला, जिसमें कार स्क्रू और एक सूजा भी फिट था। से किसली खोल लेने में ज्यादा देर नहीं लगी। पार्ट 18 यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। नॉवल डॉक्टर दुआगु का बकिया हिस्सा पार्ट 19 में समाप्त हुई।